अरुणिमा जब हाल में आई तो उसने देखा कि आस्तिक अपनी गाड़ी की चाबी लेकर कहीं जा रहा था। उसने रास्ते को रोकते हुए कहा, आस्तिक कहाँ जा रहे हो? लेकिन आस्तिक ने पलटकर बस अरुणिमा को देखकर कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है। और इसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बाहर चला गया। अरुणिमा हैरान हो गई, आस्तिक इस वक्त कहाँ जा सकता है? पूरी रात अस्पताल में बिताने के बाद वो सुबह कहीं चला गया है और कहाँ गया है ये भी उसने अरुणिमा को नहीं बताया है। आस्तिक जा चुका था और अरुणिमा अकेली थी। बाहर सिक्योरिटी और घर के अंदर सर्वेंट मौजूद थे। अरुणिमा किचन की तरफ जाती है तो वहां पर एक सर्वेंट थी जो ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। उसने उसे बताया कि उसे ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। लेकिन जब वो वापस हाल में आई तो उसने देखा कि घर के दरवाजे खुले हुए हैं और उसके माता पिता वापस आ गए हैं। अपने माता पिता को देखकर अरुणिमा हल्की सी मुस्कान के साथ उन्हें देखती है और कहती है, मम्मी पापा आप लोग वापस आ गए। ब्रिजेश जी और आशा जी अंदर आते हुए उसे देखते हैं। अरुणिमा उन्हें देखकर हल्की सी मुस्कान देती है। शादी से पहले तक अरुणिमा के अपने माँ बाप के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन अरुणिमा की शादी के बाद उसके माता पिता ने उसकी खबर तक नहीं ली। और जब अरुणिमा अपने पिता के एक्सीडेंट के बाद बेंगलुरु उनके पास गई तो उसकी माँ के साथ जो बहस हुई थी, उसके बाद से अरुणिमा अपनी माँ से नाराज है। ऐसा नहीं है कि वो उनसे नफरत करती है, लेकिन वो ये चीज़ कभी नहीं भूल सकती है कि उसकी माँ ने अरुणिमा के साथ कैसा व्यवहार किया था। और इसके अलावा अरुणिमा एक बात अच्छे से जानती है कि वो उनकी सगी बेटी नहीं है, बल्कि गोद ली हुई बेटी है। ऐसे में वो उनकी कर्जदार है कि उन्होंने अरुणिमा की परवरिश की और उसे एक अच्छी जिंदगी दी है। अरुणिमा के माता पिता उसके पास आए हैं, तब से अरुणिमा और उसकी माँ ने अकेले में कोई बात नहीं की है। और अरुणिमा को अपनी माँ का व्यवहार सामान्य ही नजर आ रहा था, इसलिए उसने भी इस बात को सामने से नहीं उठाया। वो मुस्कुराते हुए उनके पास आती है, मम्मी पापा आप लोग वापस आ गए, कैसा रहा मम्मी के फ्रेंड के घर डिनर? लेकिन ब्रिजेश जी ने घबराते हुए कहा, वो सब छोड़, आस्तिक कहाँ है? हमें उससे मिलना है। हमने सुना उस पर हमला हुआ था और तुम कल रात अस्पताल में थी। जैसे ही हमें ये पता चला हम तो वहां एक मिनट भी नहीं रुके, तुरंत यहां आ गए। कहाँ है आस्तिक? मैं देखना चाहता हूँ, वो ठीक तो है ना? लेकिन अरुणिमा ने ब्रिजेश जी का हाथ थामते हुए कहा, पापा आस्तिक बिल्कुल ठीक है और वो इस समय अपने किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ है। मैं भी डर गई थी आस्तिक के ऊपर हमला हुआ है ये सुनकर, लेकिन जब मैं अस्पताल पहुंची तो मैंने देखा आस्तिक को कुछ नहीं हुआ है, बल्कि उसकी एक फ्रेंड है वो घायल हुई है। कल रात हम दोनों हॉस्पिटल में ही थे और आस्तिक कभी सुबह ही किसी जरूरी काम से बाहर गया है। आप लोग फ्रेश हो जाइए, ब्रेकफास्ट तैयार है, मैं ब्रेकफास्ट लगवाती हूँ। ऐसा कहते हुए अरुणिमा किचन की तरफ चली जाती है। वो एक सर्वेंट की मदद से सारा ब्रेकफास्ट बाहर डाइनिंग टेबल पर लगवा रही थी। अरुणिमा किचन में अकेली थी। उसके पापा को खाने में गर्म पानी पीने की आदत थी, इसलिए वो उनके लिए पानी गर्म कर रही थी। जब अरुणिमा की माँ किचन में आते हुए कहती है, अरुणिमा क्या हम बात कर सकते हैं? अरुणिमा ने अपनी माँ को देखकर गैस बंद किया और मुस्कुराते हुए उन्हें देखकर बोली, हाँ माँ आप यहाँ क्यों आ गईं? आपको कुछ कहना था तो हम कमरे में बात कर सकते थे। लेकिन आशा जी अरुणिमा के पास आते हुए उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, कुछ बात ऐसी है जो मुझे तुमसे अकेले में कहनी है। सही है, और मैं देख सकती हूँ मेरा लिया हुआ फैसला गलत नहीं था। क्या मतलब? अरुणिमा ने हैरानी से पूछा। तो आशा जी ने अरुणिमा के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, उस दिन हॉस्पिटल में जो भी मैंने तुमसे कहा था उसे दिल पर मत लगाना, उस वक्त सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी और तुम आस्तिक से अलग होने की बात कर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें गुस्से में कुछ भी बोल दिया। मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था, लेकिन तुम्हारे पापा की हालत ऐसी थी कि मैं इस वक्त कुछ सोच ही नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें आस्तिक के साथ वापस जाने के लिए कह दिया था। मुझे इस गलती को माफ कर दो, लेकिन इस बारे में अपने पापा को कुछ मत बताना, वो अभी अभी ठीक हुए हैं। अरुणिमा ने अपनी माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ मुझे आपकी बात का कभी बुरा नहीं लगा है, बस मुझे समझ नहीं आया था कि आपने अचानक से ऐसा क्यों कह दिया। मैं आपसे कुछ कह रही थी लेकिन आप उसे सुनना ही नहीं चाहती थी। उस वक्त मेरी लाइफ कुछ ऐसी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और किसके पास जाऊं, इसलिए मुझे आप सहारे के रूप में नजर आईं। पर जब आपने भी मुझे नज़रअंदाज कर दिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जीना ही बेकार है। पर कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उम्मीद की एक किरण हमें एक नए रास्ते की तरफ ले जाती है। बस ऐसा समझ लीजिए, मुझे भी जीने के लिए एक नई किरण मिल गई है। अरुणिमा इस किरण के नाम पर अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अपने मन में सोच रही थी, तो वहीं आशा जी को लगा कि अरुणिमा आस्तिक के बारे में सोच रही है। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए बोला, ये तो अच्छी बात है कि तुम आस्तिक के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हो और मैं देख रही हूं कि वो तुम्हारा कितना ख्याल रख रहा है। मुझे बस एक ही बात की फिक्र थी कि शायद मैंने जो उस दिन तुम्हें हॉस्पिटल में कहा था उसके लिए फ्यूचर में मुझे ही पछताना ना पड़े। पर अब जब मैं देख रही हूं कि तुम और आस्तिक एक दूसरे के साथ खुश हो तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए हां में सर हिलाया। आशा जी वहां से वापस जाने के लिए मुड़ी थी कि अरुणिमा को अपना सपना याद आता है और वो आशा जी से कहती है, माँ एक मिनट, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। आशा रुक जाती है और अरुणिमा को देखती है। तो अरुणिमा उनके पास आते हुए बोली, माँ क्या बचपन में मेरे साथ कुछ हुआ था? आशा जी हैरान हो जाती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आया अरुणिमा क्या कहने की कोशिश कर रही है। उन्होंने हैरानी से कहा, तुम कहना क्या चाहती हो, मैं कुछ समझी नहीं। क्या हुआ था बचपन में तुम्हारे साथ? मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन अरुणिमा ने हैरानी से पूछा, नहीं माँ कुछ तो हुआ था। एक सपना है जो मुझे परेशान कर रहा है। पहले मुझे यह सपना बहुत आया करता था, लेकिन फिर मुझे यह सपना आना बंद हो गया और कल रात मुझे फिर वही डरावना सपना आया। अरुणिमा के कहने पर आशा जी हैरानी से कहती हैं, कौन सा सपना? अरुणिमा बोली, मैंने देखा कि एक ट्री हाउस है और ये बिल्कुल वैसा ट्री हाउस है जैसा कि हमारे फार्म हाउस पर हुआ करता था, और उस हाउस पर एक लड़की है जो वायलिन बजा रही है, और फिर उसके बाद वहां पर मैं आ जाती हूं, और उसके बाद अचानक से वो लड़की जो वायलिन बजा रही थी वो ट्री हाउस से गिर जाती है। मैं बहुत डर जाती हूं। इसके आगे का सपना मैं कभी देख नहीं पाई और उस लड़की का चेहरा भी मैं कभी नहीं देख पाई, लेकिन कल रात कुछ हुआ, मैंने कुछ देखा है, मैंने उस लड़की को देखा है।